नमः विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्वेशे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास अधिगौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाल्मीकि गिरिसंभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक अक्षरम् महापातक नाशनम् कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम् मनुज्वं मारुत्तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं अवानरयुद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं सुरसे नमामि रामं राम अनुजं सीतां भरतरं भरत अनुजं सुग्रीवं वायुसोनं च प्रणमामि पुनः पुनः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पत्ये नमः। जय श्री राम। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर इस्कान मुंबई में राम नामी के उपलक्ष में आयोजित सत्संग में आप सबका स्वागत है। आदि कवि वाल्मीकि जी की रामायण का वर्णन श्रवण का आज चौथा दिन है। अयोध्या कांड करुणा का कांड है, करुणा रस विशेष रूप से उसमें भरा हुआ है। इस संसार में हमारी कुछ मान्यताएं बन जाती हैं, हृदय के अंदर कुछ आकृतियां बन जाती हैं, कुछ हमारी विशेष प्रकृति बन जाती है और उसके अनुसार हमारा जीवन उसी मार्ग में चलता है। इसलिए आचार्यों ने, कवियों ने, भगवान के महान भक्तों ने अद्भुत कारुण्य रस से लबालब भरा हुआ शास्त्र और उसका सत्संग और श्रवण और वर्णन हृदय को पिघला देता है, हृदय द्रवित हो जाता है। तो बनी हुई अंदर की मान्यताएं पिघल जाती हैं, अंदर के जो विचारधाराएं हैं वो बदल जाती हैं, संस्कार है वो बदल जाते हैं, लेकिन जो जिसके कारण हृदय द्रवित होता है वो स्वरूप हृदय के अंदर स्थापित हो जाता है। इसी को आध्यात्मिक बायपास सर्जरी बोलते हैं। ये आध्यात्मिक हृदय रोग की सर्जरी है, ये चिकित्सा है बहुत बड़ी, क्योंकि कई जन्मों से कई मन के अंदर मूर्तियां बनी हुई हैं जिसको हमने अपना मान के रखा हुआ है। वो सब जब पिघल जाती हैं करुणा रस से तो भगवान सीताराम की मूर्ति, राधा गोविंद की मूर्ति, वो करणों के द्वारा शास्त्र से हृदय में जाके अपना स्थान बना लेती है। तब भक्त का हृदय बदल जाता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। ये कथा का उद्देश्य है, कथा का उद्देश्य हृदय का परिवर्तन है। इसलिए भागवत में परीक्षित महाराज कहते हैं, कथा सुननी चाहिए निवृत्त तृषई उपगीय मानाय। ऐसे कथा सुनाने वाला निवृत्त हो जिसको संसार से कोई लिप्त न हो तो फिर हृदय का रोग बदलेगा, नहीं तो सामान्य कथा सुन के समय तो व्यतीत हो जाएगा, हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। श्री प्रभुपाद जी के भागवत भगवत गीता के सत्संग से लाखों लोग विश्व के अंदर हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया लाखों लोगों का संसार के अंदर, तो इसको कहते हैं शुद्ध भक्त के मुख से सुनी हुई कथा हृदय को परिवर्तन कर देती है। नहीं तो लाखों लोग कथा में जाते हैं, कथा सुनते हैं, जैसे पहले गए थे वैसे ही वापस अपने घर जाते हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये भी सामान्य आपको देखने को मिलेगा। सामान्य जीवन में कई लोग कथा में जाते हैं लेकिन कोई प्रभाव जीवन में नहीं, उसके जीवन में कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो कथा में लीला होती है और लीला का अर्थ है तलीन हो जाना, लयते इति लीला। आप उस लीला में उस वक्त संसार को भूल के उधर ही चले जाओ जहां लीला हो रही है, और साक्षात आप वो दर्शन करो जहां आप लीला हो रही है, और थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को इसको निरोध बोलते हैं, लीला में निरोध हो जाता है, बाहर की सारी स्मृति भूल जाती है। ये एक हमारे कुलशेखर बहुत बड़े राम भक्त के चरित्र में मिलता है कि राम कथा तो रोज सुनते थे। जो पंडित जी राम कथा रोज सुनाता था वो महाराज के भावों को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए हमेशा राम के जन्म की, राम के विवाह की, ऐसे मंगल की कथा करते थे। एक दिन पंडित जी तो कहीं चले गए बाहर किसी और यजमान के पास, उसके बेटे ने कथा शुरू की अरण्य कांड की, और कथा में तो आ गया ये प्रसंग अकेले रामचंद्र 14,000 खर दूषण त्रिसरा के सामने लड़ने को खड़े हैं। महाराज उठ के खड़े हो गए, मंत्री सेना को तैयार करो, जल्दी चलो, अकेले राम कैसे लड़ेंगे। वो तो सेना को तैयार करनी पड़ी, सेना चल पड़ी, क्यों? महाराज उस आवेश में थे कि साक्षात राम की कथा से, राम के उस कथा में अपने आप को शामिल करके। सेना जब चली आगे, बुद्धिमान मंत्री ने कहा कि महाराज तो भाव में है। एक और सामने से दूसरों को घोड़े के ऊपर भेजा के वापस आते कहते हैं महाराज राम जी की विजय हो गई, सब राक्षस मर गए, अभी आवश्यकता नहीं है। तब सेना वापस आई। ये सच्ची घटना है। तो ये भक्तों के भाव है। इसका मतलब कथा हृदय को द्रवित ऐसा करता है कि आप उस वक्त राम की सेवा में लगना चाहो, और उस वक्त नहीं, ऐसा हृदय परिवर्तन हो जाए कि सारा जीवन भगवान की सेवा में अर्पण कर दो। ये कथा का उद्देश्य होता है। कथा कन रस के लिए नहीं है, मन के परिवर्तन के लिए है, क्योंकि दूसरा जन्म मन के कारण मिलता है। मन में जो मूर्तियां बनती हैं वो हमको दूसरे जन्म में ले जाती हैं। जिसके हृदय में, जिसके मन में राधा रास बिहारी विराजमान हो जाए तो अंतकाल में उसका मन तो राधा रास बिहारी के पास ही जाएगा ना। तो ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है। कथा का उद्देश्य जो है हृदय में परिवर्तन लाना है, ऐसा परिवर्तन लाना है कि दूसरी तरफ दूसरा कहीं शरीर लेने की आवश्यकता न पड़े, जिसका श्रवण कर रहे हैं उसके चरणों में अपना जीवन समर्पित हो जाए। तो अयोध्या कांड करुणा रस मूर्तिमान होके राम की विदा, वनवास के समय विदाई, पूरा अयोध्या आंसू बहा रहा था, सबके हृदय में राम का प्रेम और राम का संभावी वियोग। अभी तक तो संभोग था, मिले हुए थे, अब वियोग हो जाने वाला है। और वियोग की भक्ति महत्वपूर्ण होती है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो भगवान के वियोग में जो प्रेम होता है वो प्रेम बहुत तीव्र होता है। तो असल में ये भी लीला भक्तों का भगवान राम से प्रेम बढ़ाने के लिए है, क्योंकि वियोग प्रेम को पक्का करता है, उसको बाह्यंग प्रेम को अंतरंग करता है। यही तो श्री कृष्ण गोपियों को कह रहे थे कि आपके बीच से मैं इसलिए अदृश्य हो गया क्योंकि आपके प्रेम को अंतरंग करना था। क्योंकि प्रेम इतना मूर्तिमान हो जाता है विरह में कि सवाय भगवान के और कुछ दिखता ही नहीं। तो रामचंद्र जी तो हमने कलकत्ता में चित्रकूट में पहुंचा दिए, भरद्वाज ऋषि और वाल्मीकि ऋषि की प्रेरणा से चित्रकूट में प्रण कुटीर में बहुत सुंदर समय सीता के संग में राम जी का बीत रहा है और लक्ष्मण सेवा कर रहे हैं। अब हम अयोध्या वापस चलते हैं। सुमंतर जो मंत्री हैं महाराज दशरथ के, वो बेमना मन नहीं था, लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र का आदेश मानकर अपने रथ को धीमी गति से सर नीचे करके अयोध्या में प्रवेश करता है। सब लोग रथ को देखते हैं लेकिन सीताराम नहीं दिखता है, हाय हाय करते हैं। महाराज के सामने जब ले जाया वहां पहुंचे सुमंतर, महाराज ने कहे सीताराम लक्ष्मण को वापस लाए, कहां है? महाराज गंगा के तट श्रृंगेरपुर में उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं वापस लौट जाऊं, और वहां से वो आगे गंगा पार करके चले गए। क्या कहा राम जी ने? सीता ने क्या क्या, सीता को वापस नहीं लाए, लक्ष्मण ने क्या कहा? ये तो कल की कथा में हमने आपको संक्षेप में बताया था। रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल को देखने के बाद दशरथ अपने महल में जब गए कौशल्या के, तो कहते हैं कौशल्या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम नजदीक आओ मेरे पास, मुझे पता लगे मुझे कुछ दिखता नहीं है। इसका अर्थ है कि राम को आखिरी बार दशरथ ने देखा, उसके बाद उसने कुछ दुनिया में नहीं देखा, उसकी आंखों ने कुछ नहीं देखा उसके बाद। आज जब सुमंतर ये समाचार दे के चला गया है कि वापस नहीं लौटे हैं, रात को दशरथ जी कौशल्या को कहते हैं मेरे को याद आ रहा है मेरे जवानी के दिन, शब्द बेदी बाण जब मैं चलाया करता था, और मैं हाथी के पानी पीने की आवाज या हिरण के पानी पीने का आवाज समझ के बाण चलाया था, और श्रवण कुमार की छाती को बिन दिया था, तब श्रवण कुमार की छाती से बाण निकालते उसको पीड़ा हुई और उसके प्राण निकल गए। उसके माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि एक दिन पुत्र वियोग में तुम्हारे प्राण निकलेंगे। कौशल्या लगता है कि वो समय आ गया है, ये दशरथ के मुख से शब्द निकले राम राम, और महाराज दशरथ के प्राण पक्षी उड़ गए। अब तो ये आधी रात का समय है, महाराज दशरथ इस प्रसंग को लेके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं भागवत में एक जगह पे, दुनिया में पिता एक ही हुआ है, जो पुत्र के वियोग में जीवित नहीं रह सका वो महाराज दशरथ थे। मदगत प्राणा, भक्तों के लक्षण में आता है कि अगर भक्त के हृदय में भगवान नहीं रहे तो प्राण निकल जाएंगे, उसका उदाहरण महाराज दशरथ है। मदगत प्राणा, प्राण निकल गए। और महाराज नंद बाबा कहते हैं एक ही पिता संसार में तो दशरथ थे, राम जी का सुना के नहीं आया, प्राण निकल गए, अभी तक हम जीवित कैसे हैं? कृष्ण हमसे बिछड़ के मथुरा चला गया, अभी तक हमारे प्राण कैसे रहे हुए हैं? एक ही अद्भुत पिता हुए हैं पृथ्वी के ऊपर। सुबह तक तो पूरे शहर में हाहाकार हो गया, महाराज दशरथ परलोक से धार गए। अब न घर में, चारों भाइयों में से एक भी भाई घर में नहीं है। राम के वियोग तो पहले से सबको, राम के बिछोड़े से पहले से सब आधे तो मरे हुए हैं ही। अब ये महाराज का जो समाचार सुना, हाय हाय हो गया सारे शहर में। वशिष्ठ जी आए, एक नाव के अंदर तेल डाल के महाराज के शरीर को सुरक्षित रखा, दूतों को बुलाया, तत्काल तीव्र गति से जाके भरत को और शत्रुघ्न को कहो अति आवश्यक आपको अयोध्या में बुलाया गया है। बहुत तीव्र गति से दूत पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले लिखा है वाल्मीकि रामायण में भरत जी को कुछ अपशुकन होने लगे, ऐसा उसने स्वप्न देखा और कहता है न हो तो भी या तो हमारे प्रिय पिता या भरत या लक्ष्मण या राम जी को या किसी का कुछ अहित हुआ है ऐसे मुझे लगता है। वाल्मीकि रामायण में तो शब्द है कि किसी का मृत्यु हो गया है ऐसे मुझे लगता है, ऐसा स्वप्न मुझे हो रहा है। और मित्र कहते हैं आइए भरत जी आज आपका हमारे घर में भोजन है, कहीं जाने का मन नहीं करता है। भरत बहुत विचलित है और उस स्वप्न के मिटाने के लिए दूसरे दिन भरत ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिया है, गौ दान किया कि ये अपशुकन जो हुआ है इसका किसी तरीके से उपचार हो जाए। इतनी देर में दूत भागते हुए आके पहुंचे हैं, प्रणाम किया है। महाराज वशिष्ठ ने गुरुदेव ने कहा है कि तत्काल आप आइए, और ऐसे ही तत्काल सबको बस हाथ जोड़ के विदा किया। और दोनों भाई तीव्र गति से मन करता था कि उड़ के जल्दी पहुंचे। अयोध्या की सीमा में आते हैं तो सरयू बह नहीं रही है, खड़ी हो गई है, पेड़ों के सारे पत्ते झड़ के नीचे गिर गए हैं, दुकान खुले नहीं है, सरोवरों के ऊपर कोई स्नान करने वाला नहीं है, न सीता कुंड पे कोई है। ऐसा अपशुक क्या हो गया, सारी नगरी बिल्कुल सूनी सूनी पड़ी है। पिताजी के दर्शन के लिए तीव्र इच्छा हुई, और ये उनकी हमेशा विश्वास था कि पिताजी तो केकई के महल में होते हैं, लेकिन प्रायः कौशल्या जी भी वहां जाती हैं और बहुएं भी वहां जाती हैं, राम लक्ष्मण भी वहां होते हैं। जिस समय हम पहुंच रहे हैं तो सब लोग वहां मिलना चाहिए, तो वो केकई के महल में प्रवेश करते हैं, भरत और भरत के पीछे शत्रुघ्न। भरत को देख के केकई एकदम उत्साह के साथ उठी है, अपने बेटे को प्रेम से आलिंगन किया, मुंह सर को सूंघ लिया। लेकिन भरत प्रणाम पूछते हैं हमारे पिताजी का क्या हाल है, हमारे भाइयों का क्या हाल है, अपने पीहर का पता पूछ रही है केकई देश का। भरत ने संक्षेप में कहा सब ठीक है, लेकिन हमें जल्दी गुरुदेव ने बुलाया है, पिताजी कहां है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। केकई अपनी बात शुरू कर दी, बेटा तुम्हारे लिए तो मांगलिक कार्य है इसलिए गुरुदेव ने बुलाया है, तुम्हारा राज अभिषेक होना जाएगा, राज अभिषेक करना। मेरा राज अभिषेक क्यों करना, पिताजी कहां है। अब केकई कह नहीं पा रही है, अपने वरदानों की बात करती है, और महाराज दशरथ के प्राण त्यागने का शब्द सुनते भरत तो मूर्छित होकर गिर पड़े। हे तात कितना अभागा हूं कि अंत समय आपका दर्शन नहीं कर पाया। और उठ के कहते हैं माता आपने कुल के ऊपर तो कलंक लगा लिया, लेकिन आज मैं समझूंगा आपकी कोख से जन्म लेके मैं दुनिया के अंदर बहुत नीच नजरों से देखा जाऊंगा। शत्रुघ्न को तो पीछे क्रोध आ रहा था, इतनी देर में वो कुबड़ी मंथरा सजी धजी सोने से अंदर आई और उनका आने बधाई हो युवराज पद और राजा बनने वाले मेरे बेटे भरत। पीछे खड़े हुए शत्रुघ्न को क्रोध तो पहले ही था, ऐसे धड़ाम से एक लात मारी कुबड़ के ऊपर, कुबड़ टूट गई, सर फूट गया, दांत नीचे गिरे, मुख से रुद्र ऐसे हाय हाय करने लगी। चोटिया से पकड़ के शत्रुघ्न, उधर शत्रुघ्न के लिए लिखा है लक्ष्मण अनुज, अभी तक कहते थे भरत का अनुज, जो आज काम कर रहा है लक्ष्मण के छोटे भाई वाला कर रहा है, क्योंकि भरत ने तो आज तक ऐसे किसी के ऊपर हाथ उठाया नहीं है। लेकिन कि भरत लक्ष्मण लघु, लक्ष्मण का छोटा भाई, उस वक्त भरत कहता है भैया स्त्री अवध्य है, मारना नहीं चाहिए। वैसे मैं तो मेरी मां का भी सर काट देता, लेकिन भैया राम इस बात को सुनेंगे तो हमसे बात भी नहीं करेंगे, राम ये स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए और राम जी को अगर पता लग गया कि हमने इस तरीके से स्त्री के ऊपर हाथ उठाया है तो शत्रुघ्न राम हमसे बात, शत्रुघ्न एकदम कुबड़ी को छोड़ दिया। लेकिन अब भरत कहते हैं वो पिताजी के मृत्यु का सुना तो मूर्छित हुए, जब राम के, राम कहां है? अब पिता नहीं है तो पिता के समान राम मेरे भ्राता, उसके उसकी गोद में सर रख के मैं तो बेटा, राम को तो 14 वर्ष वनवास दे दिया, अब तो आंखों से आंसू भी नहीं आ रहे, स्तब्ध हो गए भरत। भरत की ऐसी स्थिति होती कि रोना भी नहीं आ रहा है, अब कहां जाऊं, पिताजी नहीं है जिसकी गोद में सर रखूं, राम जी नहीं है, सूझा मां कौशल्या के पास जाता हूं। बस वो राम जननी विशाल हृदय है, उसके चरणों में मुझे सांत्वना मिलेगी। कौशल्या के महल में भरत ने प्रवेश किया है, कौशल्या उठ के दौड़ी है भरत की ओर और रास्ते में गिर पड़ी, भरत ने उसको संभाला है, मां को प्रणाम किया है। कौशल्या कहती है बेटा गले लगा लिया, तुम्हारा दिल खुश हो गया, आंसू आंखों में आ गए के बड़ी मां इस केकई के क्षण यत्र पे मैं बिल्कुल सम्मिलित नहीं हूं, मैं शब्द खा के कहता हूं कि मुझे पता भी नहीं है क्या हुआ है। 3 बार शब्द खा के भरत कहते हैं मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, ये सब कैसे हो गया, मुझे मेरी मां कुछ मालूम नहीं है, मैं तो आपके शरण में आया हूं। अब तो कौशल्या को हृदय में तो थोड़ा ऐसे था कि इसकी वजह से सब कुछ मेरे बेटे से वियोग हुआ है, लेकिन भरत के मन के भाव को देखकर उसको गले से लगा लिया, आंखों से आंसू है कौशल्या के, एक तो पति का वियोग, एक बेटे का वियोग, और ये एक घर में आया। तब कौशल्या कहती है बेटा समय उचित पिताजी के अंतिम संस्कार करने की तैयारी करनी चाहिए, ये काम। अब तो भरत कहता है 4 पुत्रों के पिता के अंतिम समय एक भी नहीं उसको मुख आग देने वाला नहीं था, और आज बड़ा पुत्र नहीं है और ये मुझे करना पड़ेगा, ये तो कितना विधि का विधान है। इतनी सुबह होती है, गुरु वशिष्ठ आते हैं, कहते हैं भरत यश अपजस हानि लाभ जन्म मृत्यु ये तो सब विधि के हाथ में है। हानि तो अयोध्या वासियों की हुई जिनसे राम का बिछोड़ा हुआ, लाभ तो देवताओं का हुआ जिसकी वजह से राम वनवास गए और रावण मरेगा, मृत्यु आगे तो रावणों की होगी, अभी तो महाराज दशरथ के यहां प्राण त्याग दिए हैं। तो ऐसे यश तो मिलेगा राम को जिसने वचन पालन किया पिताजी का, और अपजस तो और कलंक मेरे को और केकई को मिला है, ये तो सब ऐसे दिख रहा है सामने। लेकिन भरत कहते हैं अब तो आपको पिताजी के अग्नि संस्कार का विधिवत जो है कार्यक्रम पूरा हुआ, अच्छे समय के ऊपर सभा सारी को बुलाया, सब मंत्रियों को बुलाया, और महाराज वशिष्ठ बोलने लगे भरत आपके पिताजी की आज्ञा है, आप राज सिंहासन को स्वीकार कीजिए, राज अभिषेक की सामग्री तैयार है। पिताजी की आज्ञा पालन करते हुए परशुराम ने अपनी माता रेणुका को मार दिया था, पिताजी की आज्ञा पालन करते हुए ययाति को अपने बेटे ने अपनी जवानी दे दी थी, तो पिताजी की आज्ञा का तो कभी उल्लंघन करना ही नहीं चाहिए, और राज तो इस वक्त कोई करने वाला है नहीं। मंत्रियों ने कहा रामचंद्र भरत जी आप तो राज तिलक का ये कार्यक्रम कीजिए, जनता में कोई राजा नहीं है, प्रजा ने ये कहा, माता कौशल ने कहा गुरुदेव कह रहे हैं आप इस कार्य को कर लीजिए। तब भरत हाथ जोड़ के कहता है पिताजी की आज्ञा पालन करना पुत्र का धर्म है, गुरु की आज्ञा पालन करना शिष्य का धर्म है, माता की आज्ञा पालन करना भी पुत्र का धर्म है, और प्रजा की आज्ञा पालन करना ये मेरा धर्म है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता क्या इक्ष्वाकु वंश में कभी छोटे भाई ने राज किया है बड़े भाई के होते हुए, ऐसे कभी हुआ नहीं है। और अगर मैं राज के ऊपर बैठ जाऊंगा तो राम जी कभी अयोध्या नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो मेघराज में तो कंटक कभी बनना नहीं चाहेंगे। ये धरती रसातल में चली जाएगी अगर मैंने राज किया तो। माता आपने ही तो कहा था कौशल्या, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दशरथ को कह रहे थे कौशल्या, राम 14 साल के बाद वापस नहीं आएगा। शेर किसी और का शिकार किया हुआ पशु नहीं खाता है। दूसरे के राज के सिंहासन के ऊपर बैठने के बाद राम जी आके सिंहासन के ऊपर नहीं बैठेंगे, ये संभव नहीं है। और राम तो इतने सुशील हैं कि वो भरत ने साथ ले लिया राज तो फिर इस राज में कभी नहीं आएंगे। आज भरत कहता है ये धरती के ऊपर से धर्म उठ जाएगा, मैं राज के ऊपर बैठ गया सिंहासन के ऊपर तो मर्यादा लुप्त हो जाएंगी, लोग कहेंगे पिता मरता है तो मरने दो, माताएं विधवा होती है तो होने दो, भाई बन में भटके तो भटकने दो, बाभी धक्के खाए तो खाने दो, छोटा भाई बन में भटके तो भटकने दो, प्रजा दुखी हो तो दोनों दुखी होने दो, मुझे ऐश करने दो, मैं राजा बन जाऊंगा। और लोग कहेंगे कि ये कौन खड़िया, किसने ऐसे किया, कहेंगे भरत ने ऐसे किया, भरत के कारण पिताजी का मौत हुआ, भरत के कारण माताएं विधवा हुई, भरत के बाद राम लक्ष्मण वनवास में गए। तो मैं तो दुनिया विश्व के अंदर सारी नीति मर्यादाओं को नाश करने वाला बन जाऊंगा। राम जी चित्रकूट में ये शब्द कहते हैं, मैं शब्द खा के कहता हूं, पक्षपात मत समझना भरत, तुमने ये त्याग नहीं किया होता राज लक्ष्मी का, ये बलिदान नहीं दिया होता तो आज भाइयों का प्रेम इस धरती से समाप्त हो गया होता, लोगों में से सदाचार ही निकल गया होता। तुमने धर्म की रक्षा की है भरत, तुम्हारा ये त्याग और वैराग धर्म की रक्षा का चिन्ह हो गया। आज भरत कहते हैं मैं कल ही सुबह यहां से राम जी से मिलने जाऊंगा, और जब तक उनको मना के ला के यहां का राजा नहीं बनाता हूं तब तक मैं इस राज को नहीं स्वीकार कर सकता, ये राज भी राम का और मैं भी राम का। श्री प्रभुपाद की। कल ही चलें, कल ही जाऊंगा मैं और शत्रुघ्न तो जाएंगे, आप में से किसी को चलना है तो चलो। और फिर ऐसे भी लिखा है वाल्मीकि रामायण में, मंत्री को आदेश दिया भरत ने, कल प्रातः काल ही यहां से सेना को तैयार करो, रथों को तैयार करो, जो चलना चाहे हमारे साथ चले। अब तो सारी प्रजा जो सोच रही थी कि भरत ने राज के लिए यह किया है, वो तो सब कहती है रामचंद्र के दर्शन का एक मौका मिल गया, अभी तो रामचंद्र के दर्शन हो जाएंगे, कल तो उनके पास मिलने जाएंगे, उनको मना के वापस लाएंगे। लोगों को वापस प्राण जीवन में आ गए, उनका दुख एकदम खत्म हो गया। पहली बार आज 10-12-15 दिन हो गए हैं, पहली बार अयोध्या वासियों के चेहरे के ऊपर खुशी है कि राम के दर्शन होंगे। किसी को भूख लगी है, किसी को प्यास लगी है, अब तक तो किसी को यह भी पता नहीं था, किसी मां ने बेटे को बेटा तक नहीं कहा था। आज सब भरत की जय कर रहे हैं कि भरत राम अनुरागी है, राम का प्रेम ही है, और इसके कारण हमको राम के दर्शन होंगे। सब कहते हैं जल्दी करो, निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं, सुबह सब तैयारी करने लगे। दूसरे दिन माताओं को पालकियों में, गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों को अच्छे सजे हुए रथों में बिठाया गया, पुरवासी कोई हाथी पे कोई घोड़ी पे, चतुरंगनी सेना, भरत और शत्रुघ्न सबसे पीछे, ये सारा पूरा और अयोध्या का विश्वासी सेवकों को सारा राज का कारभार संभालने के लिए देकर भरत पीछे पर चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। यहां से राम के पीछे मां कौशल्या ने देख लिया कहा बेटा पैदल नहीं, घोड़े के ऊपर चढ़ के चलो। मां की आज्ञा का पालन किया। तमसा नदी के किनारे रात को रुके एक रात, दूसरी रात को गोमती नदी के किनारे रुके, तीसरी रात आगे एक और नदी, चौथी रात शाम हुई है। ये सारा अयोध्या का बड़ा ध्वज, सफेद रथ, हाथी, घोड़े, ये श्रृंगेरपुर गंगा के तट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो निषाद राज गुहा ने दूर से देखा, किसी ने कहा सामने से अयोध्या की चतुरंगनी सेना, अयोध्या का ध्वज आ रहा है। राम के प्रति उसका इतने स्नेह था, इतना प्रेम था, वो सखा भाव में इतना डूबा और उसके मन में ऐसा विचार आ गया कि ये भरत अपने राज को निष्कंटक करने के लिए कहीं राम लक्ष्मण को मारने तो नहीं जा रहे। ये विचार आते ही अपने सारे साथियों को इकट्ठा करके कहता, सुनो सारी नावें, सारे खेवने के डंडे गंगा के अंदर दबा दो, कोई भी बाहर नहीं हो, डुबा दो। गंगा पार करके उस तरफ ये अयोध्या के भरत की सेना नहीं जानी चाहिए, किसी को यहां से पार होने के लिए, और सारे घाट जो हैं उनको बिगाड़ दो। और फिर गुहराज कहता है, सुनो मेरे वीरो, गंगा जी का तट है, राम का कार्य है, और क्षत्रिय के लिए युद्ध मिल जाए तो समझ लो कि बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। ये तीन अच्छे हमारे को मौके मिल रहे हैं, आज ये निर्णय कर लो कि ये सेना हमारे जेते जी गंगा पार नहीं कर सकती। और धनुष बाण उठा के तैयार हो गया। तब कहते हैं सीधे तरफ से एक छींक आई किसी को, तो किसी ने कहा नहीं, युद्ध नहीं होता है, लगता है अच्छा शोकन हो रहा है। एक बहुत बुद्धिमान शोकन वाले ने कह लिया, इसका अर्थ है कि भाव शत्रुता का नहीं दिख रहा है। तब गुहराज कहता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले भरत के भाव को परख लेते हैं, सब लोग यहां छुप जाओ, मैं भेंट सामग्री लेके जाता हूं, उनके भाव को परखता हूं, फिर मैं जैसे आपको आदेश दूं वैसे करना। गुहराज अपने साथ भेंट सामग्री लेकर और भरत की तरफ आगे बढ़ा है। गुहा को आते देखे सुमंतर कहते हैं, भरत राम जी ने सखा करके इनको गले लगाया था, ये निषाद राज राम जी का सखा है। भरत ने राम का सखा सुना, भरत रथ से उतरा और दौड़ते हुए आगे गया। गुहराज तो हाथ जोड़ के जुहार करने के लिए नीचे दंडवत किया, भरत ने उसको ऐसे गले से लगा लिया कि राम जी ने आपको अगर मित्र कहा है तो आप हमारे भाई हैं। तो गुहे को मन में आया कि मैं क्या सोच रहा था कि इसके शत्रुता का भाव कैसे मेरे मन में आ गया, और ये तो राम के मित्र को भी अपने मित्र से ज्यादा स्नेही समझता है। फिर भी गुहा ने सीधा पूछ लिया कि इतनी बड़ी सेना लेके आप कहां जा रहे। भरत कहता है हम सब ये मंत्रियों के साथ राजतिलक की सामग्री भी लेके जा रहे हैं, हम तो वन में ही गुरु जी को भी साथ ले जा रहे हैं, ये गुरु माता अरुंधति भी विशेष रूप से राम के दर्शन के लिए चल रही है, हम कैसे भी मना के राम जी का राजतिलक उधर ही वनवास में करके वापस ले आएंगे। अब तो गुहा का हृदय गदगद हो गया, दो भगवान के प्रेमी भक्त आपस में मिले हैं। गुहा ने संकेत किया कि युद्ध नहीं करना है, अब स्वागत करने की तैयारी करो। एकदम पूरा वातावरण बदल गया है और सारे लोग आके स्वागत करते हैं, वन के फल फूल लाके रात को दिए हैं, माताओं के चरणों को लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न दोनों सेवा करते हुए भरत का मन किया उठ के गुहा राज को कहते हैं, रात को राम जी कहां सोए थे? वो अंगूदी का पेड़ दिखाया जिसके नीचे रात को सीताराम विश्राम किया था, वो घास बिछा हुआ। गुहराज ने तो उसको अच्छी तरह से सुरक्षित करके और एक स्मारक बना दिया था जिसकी रोज परिक्रमा करके प्रणाम करता था। बोला मेरे लिए यही अयोध्या है, अयोध्या से भी ये मेरे लिए महान है क्योंकि यहां मेरे आराध्य देव रात को विश्राम किया है। और भरत वहां जाके देखता है, बोला इस घास के ऊपर राम जी सोए थे, और तब तो सीता जी के रेशमी कपड़े का कोई धागा देखा। भरत के आंखों से आंसू आते हैं। भरत कहता है मेरे कारण कितना कष्ट सहना पड़ रहा है हमारे राम को सीता को। बोला लक्ष्मण बोलो तो सारी रात जाग रहा था, लक्ष्मण सो नहीं पाया, कितना सुमकुमार है, आज तक तो उसको कभी गर्म हवा नहीं लगी है। भरत को बहुत हृदय में पीड़ा हो रही है। और उस वक्त गोयाराज से बात करते हुए गंगा में स्नान करके दूसरे दिन सुबह आगे आगे तो गोयाराज को बोला आप रास्ता बताओ गंगा पार सबको कराने के लिए। लेकिन भरत ने आज जब सुना गोया से कि राम जी ने यहां वट वृक्ष के दूध से जटाएं बांध ली थी, भरत ने भी जटा बांध लिए, सबको आगे करके माताओं से आंख छुपा के पीछे पैदल चलना शुरू किया। ये भरत का सबसे ज्यादा पैदल यात्रा है, श्रृंगेरपुर से लेकर त्रिवेणी संगम तक पैदल चला है, पीछे पीछे चला है। सब लोग वहां पहुंचे हैं, त्रिवेणी का दर्शन हुआ है, लेकिन भरत जब वहां पहुंचा है तो पांव में फफूंदे हो गए हैं पैदल चलने से। लेकिन गंगा जमुना के सांवले और गोरे रंग को देखता है, उसको तो सीताराम का स्मरण आता है, और उसको लक्ष्मण दिखता है उस गंगा जमुना को देखकर। यहां पूछा भरत, सबने स्नान किया, और भरत स्नान करने से पहले ऐसे त्रिवेणी के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं मैं अपने धर्म को त्याग रहा हूं। कौन से धर्म को त्याग? क्षत्रिय धर्म को त्याग रहा हूं। क्षत्रिय किसी से मांगता नहीं है, ये तो भगवत गीता में जब अर्जुन ने कहा मैं भीख मांग लूंगा तो कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय भीख नहीं मांगता। लेकिन आज भरत कहता है मैं अपने धर्म का परित्याग करके भीख मांगता हूं, और वैसे उससे भी ज्यादा मैं धर्म को ऐसे छोड़ रहा हूं, कन्या से कभी लिया नहीं जाता है, कन्या को हमेशा दिया जाता है। ये जमुना तो सूर्य पुत्री है, ये तो हमारे कुल देव सूर्य की पुत्री है, तो ये हमारी कन्या हुई ना। और ये गंगा भागीरथी है, ये भागीरथ इसको लाया, वो भी तो हमारा कुल का राजा हुआ है। और ये सरस्वती तो वशिष्ठ जननी है, ये तो हमारे लिए सारी पुत्रियों के समान है। मैं आपसे आज मांग रहा हूं अपना धर्म त्याग कर, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सीता राम के चरणों में जन्म जन्मांतर की भक्ति चाहिए, मेरे ऊपर ये कृपा करो त्रिवेणी। अद्भुत ये शब्द भरत के मुंह से यहां निकले हैं। तब त्रिवेणी के अंदर से आवाज आया भरत तुम साधु हो, तुम्हारा प्रेम सीता राम के लिए जो है वो अनुपम है, ऐसा कोई पहले हुआ नहीं है। यहां भरद्वाज ऋषि के आश्रम के अंदर सब रुके हैं। भरद्वाज ऋषि ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार सबके लिए बड़ी व्यवस्था की है, सबको सुख इतना दिया है कि सबको तो सब राम नाम ही भूल गया, लेकिन माताएं वशिष्ठ जी भरत शत्रुघ्न ये तो वार्तालाप कर रहे हैं। यहां पहली बार भरत ऋषि भारद्वाज के सामने संकोच कर रहा है कि अगर भारद्वाज ने मुझसे पूछा कि महाराज दशरथ का क्या समाचार है, मैं क्या उत्तर दूंगा, अगर पूछा राम जी कैसे हैं तो मैं क्या कहूंगा, अयोध्या का समाचार मैं कैसे दूंगा, मेरा पूछेगा तभी मुझे पता नहीं है। लेकिन मुनि ने कहा मैं सब जानता हूं, भारद्वाज ने कहा मैं सब जानता हूं। तब भरत कहते हैं यहां संत मंडली के अंदर पहली बार भरत ने अपने हृदय की बात कही है। भरत कहते लोग मेरे मां को कुल घातनी कहें मुझे उसकी चिंता नहीं है, लोग मुझे कलंक लगाएं कि मैंने राज के लिए सब कुछ किया मुझे उसकी भी परवाह नहीं है, लोग मेरे पिता के मृत्यु का कारण मुझे कहें तो भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि जिस पिता को राम लक्ष्मण जैसे आज्ञाकारी पुत्र हों और जो राम राम करते हुए प्राण त्यागे, बाकी क्षण भंगर शरीर में और रखा ही क्या है, वो तो महान हमारे पिता है, उसके मृत्यु का भी मुझे चिंता नहीं, माताओं के विधवा होने का भी मुझे इतना दुख नहीं। अगर पूछते हो तो संतों के बीच में मैं बात करता हूं, मुझे दुख ये है कि सीताराम और लक्ष्मण कैसे रोज धरती के ऊपर सोते होंगे, कैसे फल फूल खाते होंगे, कैसे कांटों के ऊपर चलते होंगे, ये मैं सहन नहीं सकता हूं। मेरे दुख का कारण ये है, ये मैं किसी और को बता नहीं सकता हूं। आगे एक जगह राम जी कहेंगे, भक्त का भाव बहुत सुंदर उसने एक लिखा है, छोटी कथा। भारद्वाज आश्रम से चित्रकूट जाते हुए रास्ते में एक जगह बड़ा सूल जैसा कांटा किशोरी सीता के चरणों में लगा है, तलवे में लगा है और ऊपर निकल आया है, धड़ाम से नीचे राम करके गिर गई है। लक्ष्मण के आंखों में आंसू है, धीरे धीरे कांटे को निकालने का प्रयास कर रहा है। राम जी के आंखों में आंसू है और राम जी कहते हैं, हे मां पृथ्वी, मैं आपको प्रार्थना करता हूं। तब तो पृथ्वी बोली, रघुनाथ अभी कोई कांटा आपके रास्ते में नहीं आएगा। राम जी कहते हैं, सीता के रास्ते में कांटा आए तो आने दो, नहीं तो पतिव्रता स्त्री के धर्म का पता संसार को कैसे चलेगा। लक्ष्मण के रास्ते में कांटा आए तो आने जाओ, नहीं तो सेवक के धर्म का संसार को पता कैसे लगेगा। मेरे रास्ते में कांटा आए तो आने दो, नहीं तो नायक के धर्म का पता कैसे लगेगा। भागवत में तो लिखा है कि कंटक दंडक आरण्य के कांटों के ऊपर राम जी चले हैं। लेकिन फिर राम जी कहते हैं, लेकिन हे वसुंधरे, हे क्षमाशील माता पृथ्वी, मैं विनती करता हूं, कभी अगर भरत इस रास्ते से आए तो वो साधु पुरुष है, तुम कोमल हो जाना, तब कांटा नहीं निकलना चाहिए। पृथ्वी कहती है, वो साधु है, आप सह सकते हो तो भरत क्यों नहीं सह सकता है। राम जी कहते हैं, मां पृथ्वी, साधु के स्वभाव को आप नहीं जानते हैं, मैं मेरे भरत को जानता हूं। भरत को कांटा लग गया तो अपने दर्द की परवाह नहीं करेगा, वो कहेगा, हाय राज, यहां सीताराम गए हैं, उनको कांटा लगा होगा, और लक्ष्मण के कांटे का सोच के उसका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। इसलिए मां मेरी प्रार्थना है कि इस रास्ते से कभी भरत गुजरे तो कोमल हो जाना। आज जब यहां से भरत गुजर रहा है तब धरती तो बहुत कोमल हो गई है, लेकिन आकाश में बादल भी छा गए हैं ताकि गर्मी न लगे भरत को। ये राम जी का यहां भाव था। और यहां से भरत आगे चला तो ऊपर देवता बृहस्पति को कहता है इंद्र, इतना बड़ा अगाध प्रेम भरत के हृदय में है, ये राम जी को मना के वापस लाया तो हमारा सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। बृहस्पति जी कहते हैं, इंद्र, भरत साधु पुरुष है, भगवान को अपने से किए हुए अपराध की चिंता नहीं है, लेकिन भक्त के लिए तुमने कुछ किया तो दुर्वासा से जाके पूछ लो। उदाहरण दिया है कि दुर्वासा से पूछ लेना। इसलिए भरत के विषय में बिल्कुल कुविचार नहीं लाना, नहीं तो कभी भी राम जी क्षमा नहीं करेंगे तुमको। और फिर कहते हैं बृहस्पति, भरत साधु है, उससे आपका भी हित नहीं होगा, और वो सुशील और मर्यादा और नीतिज्ञ है। अब इंद्र चुप हो गया। भरद्वाज जी ने दो शब्द बड़े सुंदर कहे थे, एक उदाहरण दिया, आपके कुल में भागीरथ महान है, गंगा को धरती के ऊपर लाया, पति तपावनी को, लोगों का उद्धार हो रहा है गंगा में स्नान करके, लेकिन भागीरथ से दशरथ महान है, जो साक्षात भगवान श्री राम को धरती के ऊपर अपने प्रेम के कारण लेके आया, जिसका नाम जप के गंगा के किनारे न जाते हुए अपने घर में सब भगवान को दुखों से मुक्त हो रहे हैं। तो दशरथ तो भागीरथ से महान हुआ ही ना, कि जो भगवान राम को धरती के ऊपर प्रकट कर दिया। और फिर कहते हैं, भगवान से भगवान का प्रेम बहुत बलवान होता है, और भरत उस प्रेम की तुम मूर्ति हो, इसलिए मेरे जप तप से मैंने दर्शन किया था सीताराम लक्ष्मण का, लेकिन सीताराम लक्ष्मण के दर्शन के प्रभाव से आज मुझे राम प्रेम की साक्षात मूर्ति भरत तुम्हारा दर्शन हुआ है, मैं धन्य हो गया। प्रेम भगवान से भी ज्यादा बलवान होता है। भगवत प्रेम अति अद्भुत है। आज ये जमुना जी को जब पार करते हैं तो जमुना जी में स्नान किया, प्रणाम किया, जमुना जी को भी प्रार्थना किया। चित्रकूट से थोड़ा बाहरी भरत ने कहा, नहीं, यहां ऋषि रहते हैं, यहां शांत वातावरण में सेना को यहां रोक दो, जाओ पता करो राम जी की कुटिया कहां है, गुहा निषाद जरा पता करा लो। लेकिन चारों ओर इतनी बड़ी सेना को देखकर पक्षी उड़ रहे थे, हिरण इधर से उधर भाग रहे थे, राम जी शांत वातावरण में ये उड़ती हुई धूल, ये चिंगारते हुए हाथियों को दूर से सुना, हिरणों को दौड़ते हुए देखा, पक्षियों को पर फड़फड़ाते हुए देखा, कहा लक्ष्मण ये शांत वातावरण में अशांति कहां से आ गई, जरा पेड़ के ऊपर चढ़ के चारों ओर नजर दौड़ाओ, देखो तो सही। ऐसे भी वाल्मीकि रामायण में लिखा है और ऐसे भी लिखा है किसी राम जी के सेवक निषाद ने आके कहा कि भरत जी अयोध्या के सारी सेना के साथ आ रहे हैं। तो पहले तो राम जी कहते हैं भरत का प्रेम इतना है और इतने सारे गुरुजनों के साथ अगर आ रहा है तो मैं उसको ना कैसे कर पाऊंगा, और मुझे बहुत संकोच हो जाएगा और मैं अपने वचन पालन में कहीं विफल न हो जाऊं। तब कहते नहीं, मेरा भरत आज्ञाकारी है। आश्वासन हो गया कि भरत मेरा आज्ञाकारी है। लक्ष्मण ने ऊपर से कहा कि अयोध्या का ध्वज दिख रहा है भैया, मैं समझता हूं कि भरत राज तिलक के बाद अभी हमको अकेला समझ के यहां आ रहा है, उसकी बुद्धि ठीक नहीं है लगता है, मैं यहां से ही उसको जैसे हाथनियों के पूरे से झुंड के ऊपर एक शेर जाके सबको भगा देता है, इस पूरी सेना को मैं जाके नष्ट कर देता हूं। राम जी कहते हैं भैया आप ठीक कहते हैं, राज का मद में अंधा होता है आदमी, दुनिया में सब मद जो है उसमें से राज का मद सबसे बड़ा नशा है, ये जो कुर्सी का नशा है ये बहुत खतरनाक है बेटा, मैं भैया मानता हूं, लेकिन मेरा भरत उसको ये नशा नहीं हो सकता है, वो साधु स्वभाव है। अब ये वार्तालाप हो रही है, बड़े सुंदर वचन राम जी ने भरत की प्रशंसा के किए हैं। तब तक सबको रोक के मंदाकिनी के तट के ऊपर भरत जी ने स्नान किया, शत्रुघ्न और गुहा को साथ लिया और राम जी की ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं। और राम जी भी जैसे भरत को शत्रुघ्न को देखा है तो बड़े तीव्रता से आगे बढ़े, लेकिन राम वो नीचे भरत गिरता है, राम जी उठा के ऐसे गले लगा लेते हैं और राम जी और भरत का जहां मिलन हुआ है चित्रकूट में, वो कमदगिरी के परिक्रमा में उस स्थान पे नीचे का पत्थर सारा पिघल गया है और दोनों भाइयों के पांव के निशान डेढ़ डेढ़ फुट के लंबे आज भी पत्थर में देखने को मिलते हैं कि पत्थर इन भाइयों के मिलने के प्रेम से पिघल गए हैं। अपने कुटिया में लाए हैं राम जी भरत और शत्रुघ्न को भी गले लगाया है। लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया है, अपने मन में थोड़ा सा दुर्भाव आया था उसके लिए क्षमा याचना, बैठ के भरत कहते भैया आप चलिए राज लीजिए। राम जी कहते मैं क्यों राज लूं, राज आपको पिताजी ने दिया है तो पिताजी राजा तो है ही ना। अब भरत के मुख से निकला पिताजी परलोक से धार गए। राम जी मूर्छित हो गए, पिताजी के वियोग में थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, फिर उठ के गए मंदाकिनी के तट के ऊपर महाराज दशरथ का श्राद्ध करने के लिए, तृपण करने के लिए, लेकिन आटा भी नहीं था। अंगूदी का पेड़, उसका गुदा निकाला, एक बेर उसके ऊपर रखा और कहा, पिताजी जो हमको उपलब्ध है और जो हम खाते हैं वो आपको अर्पण कर रहे हैं। पंडित जी ने उस वक्त महाराज दशरथ का हाथ ऐसे बाहर निकल आया उसको लेने के लिए। पंडित जी ने कहा, रामचंद्र पिंडदान कुश घास के ऊपर रखने का नियम है, सबके पिताजी का हाथ निकलेगा नहीं, शास्त्र की मर्यादा लोग मानेंगे नहीं। राम जी ने वो पिंडदान कुश के ऊपर रखा, आंखों में आंसू है, पिता का वियोग है, वापस आया है, तब तक तो माताएं आ गई विधवा वेश में, माताओं को चरण में राम जी गिर पड़े हैं, गुरु वशिष्ठ आके बैठ गए, मंत्री आके बैठ गए हैं। अब तब भरत कहता है, मेरी मां ने वचन मांग के राज ले लिया पिताजी से, अब वो राज मैं आपको देता हूं, मेरी मां ने मेरे को दिया, मैं आपको देता हूं, आप ही राजा बनेंगे, अयोध्या के पहले भी आप राजा थे, अभी आप हैं, बाद में भी आप होंगे, मैं आपके होते हुए राज का आपका सेवक बन सकता हूं, राजा नहीं बन सकता। राम जी ने कहा, भैया मैं पिताजी की आज्ञा पालन करके आऊंगा, तब तक आप राज को संभालिए, मैं आऊंगा तब जैसे होगा देखा जाएगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, मैं गुरु के नाते भी आदेश देता हूं कि राम जी आप राज तिलक स्वीकार कर लीजिए, सामग्री हम साथ में लाए हैं। राम जी संकोच के, गुरुदेव हम आपका आज्ञा पालन करने को तैयार हैं, पिताजी के वचन की पालना करना और धर्म की मर्यादा को निभाने के लिए आप मुझे आशीर्वाद और शक्ति दीजिए। सबके समझाने से राम जी ने सबको हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, असल में उद्देश्य यह था कि मैं जो अवतार लिया है वो जब तक दंडकारण्य में जाके ऋषियों का सत्संग और असुरों का संहार नहीं करूंगा तब तक मेरा वापस आना उचित नहीं है, लेकिन मर्यादा की भाषा में। तब भरत ने कहा, फिर मैं यहां कुशासन के ऊपर बैठ के अन्न जल का त्याग करके भूख हड़ताल आज की भाषा में जिसको कहते हैं यहां करता हूं। रामचंद्र ने कहा, क्षत्रिय के लिए यह उचित नहीं है, क्षत्रिय का कभी भी ऐसे करने का आदेश नहीं है, और मैं आपको आदेश देता हूं भरत आप जाके राज कीजिए अयोध्या का। तब भरत के हाथ जोड़ के कहता है, भैया मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो कर नहीं सकता, एक दो वर मांगता हूं, आपके ये खड़ाऊ मुझे दे दीजिए, ये राज सिंहासन के ऊपर मैं रख दूंगा, और दूसरा मुझे वचन दीजिए 14 साल से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा, आप वापस आएंगे, क्योंकि उनको संदेह था कि वापस नहीं आएंगे मैं राज करूंगा तो। ये दो वचन राम जी ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं, ये तो खड़ाऊ तो देता हूं लेकिन वचन देता हूं कि एक दिन भी 14 वर्ष से ज्यादा। इसलिए जब लंका के अंदर विभीषण को राज तिलक दे दिया तो विभीषण ने आके कहा, रामचंद्र आप कुछ अभी हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, कुछ दिन यहां रहिए, मां सीता भी अग्नि परीक्षा से निकल आई है। राम जी कहता है, समय बहुत कम है, 14 वर्ष से अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया तो मेरा भरत प्राण त्याग देगा, मैं रुक नहीं सकता हूं। तब विभीषण कहता है, अब आपको वापस पैदल जाने की जरूरत नहीं, अब ये पुष्पक विमान आपकी सेवा में है, हम आपके साथ चलते हैं। पुष्पक विमान का आह्वान हुआ, राम सीता लक्ष्मण ऊपर चढ़े हैं, विभीषण चढ़ाए, सुग्रीव बोला मैं चलूंगा, अंगद भी आया, हनुमान भी आया, ये सब बलवान साथी साथ चढ़े हैं, विमान ऊपर उड़ा है, किष्कंधा के ऊपर विमान को रोका है। राम जी कहते हैं, सुग्रीव तुम्हारी पत्नी को साथ ले आए, ये सीता अकेली है, कुछ स्त्रियां बुला लीजिए। अंदर से बुलाया गया रोमा को, तारा भी आई, बाली की पत्नी, ये सब चढ़े हैं यहां से। विमान ऊपर से जाते हुए सीता को राम जी दिखाते हैं, इस रास्ते से हम आपको ढूंढते हुए आए थे, यहां हमको सुग्रीव मिले थे, तो ये पंचवटी ऊपर से दिखा, लेकिन भारद्वाज आश्रम में फिर विमान को रोका गया। हनुमान को भेजा गया कि तुम जाके भरत के मन का विचार जानो कि हमारे आने से उसको प्रशंसा होगी या वो खुशी से राज कर रहा है। हनुमान जी तो बहुत तीव्र गति से सीधा नंदीग्राम में पहुंचे हैं, व्रत को प्रणाम किया है और कहा कि कल राम जी पधार रहे हैं। हनुमान को तो ऐसे गले लगा के भरत कहते, राम जी का समाचार लाके आपने मेरे को जीवन दान दे दिया। अब तो भरत ने बुलाया सब मंत्रियों को, राम जी के स्वागत की सारी तैयारी कर ली, गुरुजनों को सबको के दूसरे दिन राम जी आएंगे और सब लोग खड़े हैं राम जी को ऊपर देख रहे हैं, अभी विमान दिख नहीं रहा है। हनुमान को ऐसे पकड़ के कहते हैं, कहां है तुमने हमको कहा था राम जी, अरे देर हो रही है। इतनी देर में ऊपर से विमान दिखाई दिया है और विमान के उतरने से पहले भरत जाके रामचंद्र के चरणों को पकड़ा है, रामचंद्र से गले मिला है। ये तो नंदीग्राम आश्रम में ही हुआ है। तो राम जी ने 14 साल से एक दिन भी ज्यादा भरत के प्रेम के कारण वन में रहना स्वीकार नहीं किया। आज भरत खड़ाऊ को छत्र अयोध्या के छत्र के नीचे सिंहासन के ऊपर रखा है, स्वयं तो पीछे उसी जटाजूट से चल रहा है। सारी यात्रा वापस अयोध्या में आती है, सिंहासन के ऊपर राम के खड़ाऊ हैं, शत्रुघ्न देखभाल करता है, लेकिन भरत का मन नंदीग्राम से अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में 2 किलोमीटर की दूरी पे राम जी धरती पे ऊपर सोते हैं, तो मैं उससे नीचे 2 फीट खड्डा खोदा है गुफा के अंदर, जटा वही बांधे हैं, फल फूल खाते हैं। 14 साल तक वैसे वनवासी की तरह भरत भी वहां रहने लगे, लेकिन अपने राज शासन को ठीक तरह देख रहे हैं। यहां अयोध्या कांड समाप्त होता है। थोड़ा आगे चलना पड़ेगा तब अयोध्या कांड की समाप्ति में। इसके बाद सिर्फ ये एक प्रसंग है, राम जी ने देखा कि इतनी बड़ी सेना के यहां आने के कारण ऋषियों के आश्रमों में थोड़ी अशांति हो गई, अब यहां से स्थान अंतर करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। मंदाकिनी के तट पे थोड़े ऊपर चले हैं, महाराज अत्रि का आश्रम आया है, अनुसूया का आश्रम आया है। अत्रि उसको कहते हैं जो तीनों गुणों से परे हो, और अनुसूया उसको कहते हैं जो किसी में दोष देखे ही नहीं। जब कोई भक्त अपनी भक्ति से त्रिगुण अतीत बनता है, किसी में दोष नहीं देखता है, तो बिना बुलाए भगवान अपने आप वहां आ जाते हैं। सीता राम लक्ष्मण को बुलाने नहीं गया था अत्रि अनुसूया, स्वयं चल के अत्रि के आश्रम में आए हैं। अत्रि ने स्वागत किया है और अत्रि ने कहा है अत्रि के मुख से रामचंद्र को अनुसूया की महानता सुनाते हुए कहते हैं, 8-9 वर्ष तक अकाल हो गया, इस तपस्विनी अनुसूया ने अपने बल से इस मंदाकिनी की धारा को प्रवाहित किया है, या ये मंदाकिनी यहां इस अनुसूया सती की शक्ति से बह रही है, सबको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। एक दिन तो इस अनुसूया ने एक रात को 8 दिन 8 रातों जित बड़ी कर दी देवताओं के भले के लिए। एक बार एक ब्राह्मणी अपने कुष्ठ रोगी पति को उठा के जा रही थी, तो किसी साधु को उसका पांव लग गया। साधु ने कहा, मुझे अविपिता अपवित्र कर दिया, कल सूर्य उगते ही तेरे पति के प्राण निकल जाएंगे। ये पतिव्रता स्त्री कहती है, सूर्य उगेगा तब मेरे पति के प्राण निकलेंगे ना, सूर्य का उगना ही बंद कर देती हूं। और उसकी पतिव्रता शक्ति इतनी थी कि सूर्य उगा नहीं। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन देवता परेशान हो गए। यहां तो मुझे यह भी याद आता है, पहली बार सूर्य के सारथी अरुण को छुट्टी मिली, पहली बार एक दिन ऐसा मुश्किल से नहीं, सूर्य को तो छुट्टी है ही नहीं। अरुण उस दिन कहता है, आज अपना काम बंद है, मैं जरा स्वर्ग में जाता हूं, इंद्र का हाल हवाल देख के आता हूं। अरुण वैसे लाल को कहते हैं, जो लाल रंग का हो, बहुत सुंदर है अरुण, लालाई रंग का है। अरुण अंदर अपना वेश बदल के स्त्री के रूप में, एक गान चल रहा था इंद्र का, उसके अंदर चला गया। इंद्र ने ऐसे देखते हुए देखा, ये नई अप्सरा कहां से आई है? और इंद्र तो इंद्र ही है, उसने नई अप्सरा को देखा तो उससे तो काम के वश प्रेम से उसको पकड़ लिया। और देवताओं के वहां तो पुत्र जन्म लेने में देर नहीं लगती है, बाली का जन्म हो गया। अरुण जो स्त्री बन के गया, बाली का हो गया जन्म। अरुण तो वहां से बाहर निकला, वापस पुरुष होके भागता हुआ आया। अब तो सूर्य को तो दूसरे दिन शायद उगेगा। सूर्य ने कहा, कहां गए थे? बोला, घूमने गया था। बोला, फिर डर क्यों रहे थे? बोला, मैं स्त्री बन के गया और इंद्र ने तो मेरे को देख के उसका आकर्षित हो गया। बोला, कैसे तुम लगे स्त्री बन के, मुझे दिखाओ तो। और अरुण फिर दोबारा स्त्री हुई तो सूर्य का मन किया कि तो बहुत सुंदर है, और सुग्री का जन्म हो गया। इस तरीके से बाली और सुग्रीव का जन्म हुआ, लेकिन दोनों आवेदिक थे, पत्नी से तो हुए नहीं थे। दोनों को कहा, यहां से जाओ, तुम्हें सड़क में तुम्हारी जरूरत नहीं है, धरती पर जाओ। दोनों को धरती पे ऐसे भेज दिया। उनकी उत्पत्ति का रहस्य ये है, इस तरीके से ये दोनों उत्पन्न हुए। जब जिस दिन सूरज नहीं उगा था तब ये सारा लीला हुई है। तो देवताओं ने जाके अनुसुईया को कहा, आप पतिव्रता हो नारी, आप सूर्य देव को उगने का आदेश दो। अनुसुईया देवहूति की बेटी है, कपिल देव की पुत्री है। ब्राह्मणी को कहता है, आप सूर्य को अपने वचन से मुक्त करो, उसको उगने दो। बोला, मां, सूर्य उगे तो मेरे पति के प्राण चले जाएंगे। बोला, तेरे पति के प्राण की रक्षा मैं करूंगी मेरे पतिव्रता बल से। ब्राह्मणी ने सूर्य को कहा, उग जाओ, सूर्य उगा है। यहां से ब्राह्मण के प्राण निकलते हुए अनुसुईया ने रोक दिए हैं, ब्राह्मण बच गया। वशिष्ठ अत्रि कहते हैं, ऐसी ये पतिव्रता और नारी धर्म की विख्यात है। और तीन देवताओं को नारद ने एक दिन जाके कह दिया, लक्ष्मी आपको प्रणाम है, मां पार्वती आप भी बड़ी पूजनीय हो, हे ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती आपको भी प्रणाम है। ऐसे अनुसुईया के बराबर आप में से कोई नहीं है, पूजनीय धरती के ऊपर वो है। झगड़ा ऐसा डाल दिया। अब तीनों अपने पतियों को कहते हैं, जाओ अनुसुईया का तप भंग करो। क्या करें? बोला, उसके साथ जाके भिक्षा मांगो। बोला, भिक्षा तो दे देगी। बोला, उसको बोलो निर्वस्त्र होके भिक्षा दे। अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अत्रि के आश्रम पे आए हैं। अत्रि जी नहीं है, अनुसुईया कहते भिक्षा दो। मां ने भिक्षा दी। बोला, ऐसे नहीं, निर्वस्त्र होके। वो हंसती हुई कहती है, आप बालक बन जाओ, मैं वो निर्वस्त्र हो जाऊंगी। वो तीनों छोटे बच्चे बन गए और मां ने गोद में लेके भिक्षा दे दी। अब तीनों वहां बच्चे होके बैठे हैं। यहां तीनों पत्नियां प्रतीक्षा कर रही हैं। दो चार तीन पांच दिन हुए, नारद हमारे पति। बोला, अनुसुईया के आश्रम में छोटे बेबी। ये तीनों वहां से सीधी आके कहती है, मां हम परीक्षा में फेल हो गए, ये तीनों हमारे पति हैं, इनको मुक्त करो, ले जाओ, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, ले जाइए। लेकिन तीनों को कहती है मां कि एक बार पुत्र बने हो परीक्षा के कारण, तो असल में भी आप एक बार हमारे पुत्र बन जाओ। तब अत्रि और अनुसुईया के घर में भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए ना, और रुद्र के अंश से दुर्वासा हुए। तो ये तीनों देवता इनके पुत्र के रूप में आए हैं। और तब कहते हैं अत्रि जी, राम जी सीता को भेजिए, अनुसुईया से शिक्षा ग्रहण कर ले। और भरत और लक्ष्मण और राम अत्रि के साथ बैठ के सत्संग करते हैं। रात वहां रुके हैं। सुबह सवेले अनुसुईया ने बहुत सुंदर, कभी नहीं मैले होने वाले, कभी नहीं फटने वाले सदा चमकते रहने वाले वस्त्र आभूषण सीता को पहनाए हैं और उसको बाहर आते हुए देखे रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। स्त्री सुंदर श्रृंगार करती है तो पति प्रसन्न होता है, ये प्रसंग इसमें दिखता है कि रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। और यहां से अयोध्या कांड की समाप्ति होती है और अरण्य कांड शुरू होता है। अब यहां से दंडक अरण्य में सीता राम लक्ष्मण प्रवेश करते हैं। क्या समय हो गया? अभी समय है ना, तो अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। सीता आगे, राम जी चल रहे हैं बीच में, सीता पीछे, लक्ष्मण चल रहे हैं। अब अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है वन, और अरण्य का अर्थ होता है जहां कभी रण न हो। रण का मतलब रणभूमि, मतलब युद्ध न हो, इसका मतलब शांत स्थान जहां साधु संत बैठ के भगवान का भजन करें, उसको अरण्य कहते हैं। इसलिए कभी गीता के टीकाकार कहते हैं कि श्री कृष्ण बड़े क्रांतिकार हैं, अरण्य के ज्ञान को रणभूमि में दे दिया। भई ये उपनिषद का ज्ञान अरण्य में, वेदों का ज्ञान ऋषियों के पास अरण्य में मिलता था, और यहां रणभूमि में गीता का ज्ञान दे रहे हैं, इतना बड़ा क्रांतिकार है ये। तो अरण्य, ये दंडक अरण्य इसका नाम था। दंडक नाम से एक बहुत बड़ा जनपद था, एक बहुत बड़ा देश था महाराज दंडक का। अगस्त ऋषि के शाप के कारण आज वन बन गया है, लेकिन सुंदर सुंदर कुटियाएं, बहुत तपस्वी ऋषि वहां रहते हैं, सुंदर सुंदर बगीचे और पक्षी, हिरण, हंस, कोयल इतने सुंदर हैं कि सीताराम उस वन को देख के बड़े आनंदित हुए हैं। ऋषियों के आश्रमों में जाके उनको प्रणाम करते हैं, उनका संग कर सत्संग करते हैं। आगे चलते हैं तो पहले सुतेक्षण ऋषि के आश्रम में आते हैं। या एक बात, इन ऋषियों के तप से संसार में जो गरीब और अमीर का भेद है ना, ये ऋषियों के तप से समाप्त हो जाता है। ऋषियों के पास कुछ भी नहीं होता है फिर भी आनंद में होते हैं, इसलिए गरीब कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम भी सुखी रह सकते हैं, क्योंकि ऋषियों के पास कुछ भी नहीं होता है तब भी सुखी होते हैं। और अमीरों के पास सब कुछ होता है फिर भी वो सुखी नहीं होते हैं, वो कहते हैं इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी सुखी है, हमारे पास सब कुछ है फिर भी सुखी नहीं है, इसलिए चलो संतों के पास चलते हैं। दोनों साधुओं के पास अपने आप आ जाते हैं, वहां उनकी थोड़ा सा समानता दोनों में आ जाती है। तो ऋषियों की तपस्या दोनों के बीच के भेद को मिटाने वाली है। राजा महाराजा लोग राजपाट छोड़ के वन में तपस्या करने के लिए जाते थे, वैराग के लिए जाते थे, लेकिन रामचंद्र वन के अंदर तपस्या और वैराग के लिए नहीं जा रहे। उनके वन में जाने का उद्देश्य है परित्राणाय, साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, साधुओं की रक्षा करना और दुष्टों का दलन करना, रामचंद्र के वनवास का यह उद्देश्य है। बिल्कुल दूसरा, एकदम दूसरा उद्देश्य है। साधुओं का संग करते हुए सुतेक्षण के पास गए। सुतेक्षण कहता है बड़े बड़े ऋषियों के सुंदर आश्रम है श्री राम, आप हर जगह जाके सत्संग कीजिए। लेकिन एक आगे चलते हैं तो सर्वभंग ऋषि का आश्रम आता है। सर्वभंग ऋषि के आश्रम में उस वक्त देवलोक से विमान उतरा है, इंद्र उसमें चढ़ के आया है और कहा आप आइए विमान में चढ़िए, देवलोक चलना है। सुतेक्षण कहता है नहीं, रुक जाओ, श्री राम सीता लक्ष्मण वन में निकट आए हुए हैं, मैं उनका दर्शन करूंगा, मैं विमान में अब चलूंगा नहीं स्वर्ग में आपके साथ। इंद्र तो अलोप हो गए, इतनी देर में श्री सीता राम लक्ष्मण सीता पहुंचे हैं। ये सर्वभंग ऋषि बड़ा आनंद से उनको देख के मुदित हो गया, उनकी प्रार्थना की, बोला सर्ग ले जाओ विमान, नहीं जाना है मुझे, इनका दर्शन करने से भगवान मिल जाए तो स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत है। तो ऋषियों का जो आए हुए विमान को वापस भेज दिया और रामचंद्र का दर्शन करके प्रसन्न हो गए। आगे एक स्थान आता है जहां एक सरोवर के अंदर से कुछ ध्वनि निकल रही थी गाने की। पूछते हैं राम जी ये क्या स्थान है, अद्भुत स्थान है। तब किसी ऋषि ने कहा यह पंच अप्सरा सरोवर है। एक ऋषि यहां तपस्या कर रहा था, पंच अप्सराएं आ गई। अप्सराओं को देख के ऋषि को तपस्या भूल गया, अभी वो तो इसी के नीचे बैठ के उनके संग में जल विहार कर रहा है। राम जी कहते हैं तपस्या करते हुए भी अप्सराओं से तप भंग हो जाता है। उसके तात्पर्य में आचार्य लिखते हैं रामानंद संप्रदाय के कि ये पांच इंद्रियां अप्सराओं की तरफ सबको अपनी ओर ऐसा आकर्षित करनी करती हैं कि भगवान की भक्ति से विचलित करके भोग में लगा देती हैं। ये इंद्रियों का बहुत प्रभाव इतना भारी है, एक एक इंद्री भी आदमी को, एक इंद्री केवल एक इंद्री स्पर्श की एक इंद्री के कारण इतना बड़ा हाथी उस खड्डे के ऊपर बनी हुई घास की हथनी को छूने के भाव से जाता है और नीचे खड्डे में गिरता है और महावत हाथी को रोड के ऊपर रुपया इकट्ठा कराता रहता है। केवल एक इस छूने के भोग के भाव के कारण इतना बड़ा भारी भरकम हाथी गलियों के अंदर देखो रुपया इकट्ठा कर रहा है, एक भोग है। और जीभा के भोग के कारण मछली अपना प्राण दे देती है, कानों के सुर को सुनने के कारण हिरण फंस जाता है, आग में पतंग कूद जाता है। तो एक एक इंद्री के कारण प्राण देता है। और जहां पांच की पांच बस में न हो तो उसका क्या हाल होगा। एक चोर था, रात को चोरी करने गया कहीं। उस आदमी की दो पत्नियां थी, एक बालों से खींच रही थी, दूसरी टांगों के ऊपर लाठी मार रही थी। इसको हंसी आ गई, ये हंसा तो पकड़ा गया तो कोर्ट में ले गए। जज ने पूछा तुम चोर हो, बोला हां। बोला चोरी करने गए थे, बोला हां। तुम्हें सजा मिलेगी, बोला जो भी सजा दो, दो पत्नियों का पति बतवाधान है, मैंने उसका हाल देखा है। तो राम का अवतार तो एक पत्नी व्रतधारी के लिए हुआ था। रामायण सुन रहे हो तो सावधान रहना, लेकिन दुख से कहना पड़ता है, इंदौर में एक यज्ञ हो रहा था और कहा कि 9 आदमी चाहिए, एक पत्नी व्रतधारी, सुबह एक भी नहीं दिखाई दिया। हम सच झूठ नहीं कह रहा हूं मैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो गौर किशोरदास बाबा जी के शव को जब ले जा रहे थे यात्रा में तो बहुत से शिष्य बनने लगे। बोला ये साधु बाबा जी से पूछो जो एक साल तक स्त्री का संग नहीं किया है वो इसको हाथ लगाए। बोला साल को छोड़ो, एक महीने की बात करता हूं। तो सब साधु गुम हो गए वहां से। जो कलयुग का इतना बुरा प्रभाव है भाई, तो रामायण अद्भुत है। वो उस दंडकारण्य के अंदर भी, वो सोबरी ऋषि की कथा तो सबने सुनी है ना, पानी के अंदर तपस्या इसलिए कर रहा था कई बार को भोग में फंस न जाऊं। और मछली को देखा मिलते हुए बाहर निकल के मांधाता राजा से 50 कन्याओं को ले आया और विवाह करके बैठ गया। तो ये इंद्रियां बहुत, चलो इस इंद्रियों का वेग कब खत्म होगा, ये इंद्रियों के भोग की इच्छा कब खत्म होगी, क्या जवाब है आपका, उत्तर क्या है? बहुत अच्छा, भगवान की सेवा में लगाने से। ये ऋषि तो भगवान की सेवा में लगाने गए थे फिर भी नीचे बैठे थे पानी में। उत्तर क्या है आपका? हाँ जी, क्या करने के बाद? बस यही उत्तर है। इंद्रियों के वेग और मन की चंचलता मरने के साथ ही समाप्त होती है, उससे पहले नहीं हो सकती। तो हमको क्या करना चाहिए? उसको बढ़ने से बचाना चाहिए। रहेगी, प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया था, याद है किसी को? कब काम वासना खत्म होती है? प्रभुपाद जी ने कहा मरता है तब। राजा ने पूछा मंत्री से, मंत्री ने कहा मरता है तब। महाराज ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, आप इसको प्रूफ करके बताओ, प्रमाण दो। महाराज ने बोला चलो अस्पताल चलते हैं, आपकी लड़की नौजवान को साथ ले लो। मंत्री, राजा, लड़की अस्पताल में गए और 80 साल का बूढ़ा मरने को पड़ा है, इधर से सुइयां दवाइयां पट्टियां बंधी हुई है। किसी ने कहा महाराज आपको देखने के लिए आया है। वो महाराज को देखा, मंत्री को देखा और फिर ऐसे दोनों आंखों से उस लड़की को देखा। मंत्री कहता है महाराज देखो मर रहा है लेकिन दिख किसको रहा है? देश का राजा खड़ा है उसको दिखता नहीं। इसलिए ये वेग जो है कभी जाने वाले नहीं है, इसको एग्रावेट मत करो। डोंट प्रोवाइड देम ए सिचुएशन व्हेन दे आर एग्रावेटेड। बहुत मुश्किल है, इसलिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। एक बनारस के संत थे, वो रोज नहाने जाते थे गंगा में। रास्ते में एक वेश्या का घर था, वेश्या बाहर निकल के बोलती थी महाराज आपकी दाढ़ी अच्छी कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी, ऐसे पूछती थी। महाराज मुस्कुरा के चले जाते थे। एक दिन समाचार आया कि महाराज के प्राण निकल गए। ये तो दौड़ती हुई वहां गई, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, महाराज ऐसे मर नहीं सकते हैं, महाराज महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। महाराज उठ के बैठ गए, बोला मैंने आपसे पूछा था आपकी दाढ़ी या मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है। महाराज कहते हैं मेरी दाढ़ी तेरे कुत्ते की पूंछ से अच्छी है। तो बोला ये पहले क्यों उत्तर नहीं दिया? बोला पता नहीं किस दिन फिर मैं कहीं गिर के कुत्ते की पूंछ से भी बुरा हो जाऊं, अब मैं मर रहा हूं, अब मुझे चिंता नहीं, अब मेरी दाढ़ी अच्छी है। अभी तक कुछ भी हो सकता था इस दुनिया में। यहां वापस राम जी सुतेक्षण के आश्रम में आए, यहां सारे ऋषि आके इकट्ठे हुए और सारे ऋषियों ने इकट्ठे होके राम जी को कहा आपका दर्शन करके हम बड़े संतुष्ट हुए, हम आप जनेश्वर हो, हमारे राजा आप ही हो। राजा वो है जो अपनी जनता के साथ मिल सके, जनता की देखभाल कर सके, आप जनेश्वर हो, हम किसी और को राजा नहीं मानते, आप हमारे राजा थे, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे राजा रहेंगे, हम आपको प्रार्थना करते हैं। देखो चारों ओर हड्डियों के बहुत ढेर पड़े हैं, ये सारे ऋषियों की हड्डियां हैं, यहां राक्षसों ने ऋषियों का तप को तो नाश किया है लेकिन उनको खा जाते हैं, ये हड्डियों के ढेर उनके हड्डियों के हैं, आप कृपा करके इस पूरे जनस्थान को, जनस्थान का मतलब है जहां साधु संत रहे, जन का मतलब जनलोक, तपलोक जैसे है, तो जनलोक का मतलब साधु जा रहे हैं, यहां साधु रहते थे वहां अब राक्षस रह रहे हैं, असुर रह रहे हैं, चारों ओर से हाहाकार। राम जी ने यहां शब्द लिया है, ये नागपुर के पास स्थान रामटेक पे शब्द लिया है कि इस पूरे दंडक अरण्य को मैं राक्षसों से शून्य कर दूंगा, मैं दशरथ नंदन राम ये वचन करता हूं, प्रण करता हूं। और यहां से पहला राक्षस मिला है जाते हुए और विराद उसका नाम है। सामने ही आके कहते आप कौन हो, यहां क्यों आए हो, क्या कर रहे हो? तो राम जी ने कहा आप कौन हो, आप यहां क्या कर रहे हो? बोला ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है किसी अस्त्र शस्त्र से मरूंगा नहीं, शक्तिशाली हूं, विराद मेरा नाम है। अब एक बार सुनो लड़के, तुम दोनों चले जाओ, ये स्त्री मेरे को दे दो। और इतना कहने के बाद राम और लक्ष्मण दोनों को, उन्हें पहले सीता को उठा के भागा, सीता को उठा के भागा राम जी ने, और लक्ष्मण ने बाण चलाना शुरू किया लेकिन मरे नहीं, अस्त्र शस्त्र से मरने वाला ही नहीं था, ब्रह्मा जी का वरदान था। बाण थोड़े लगे उसको, सीता को छोड़ा, जब तक ये दोनों नहीं मरेंगे तब तक मैं स्त्री को भोग नहीं सकता हूं। राम और लक्ष्मण दोनों को पीठ के ऊपर उठा के भागा, भागा राम और लक्ष्मण दोनों ने। सीता तो कहती हाय राम राम बचाओ बचाओ, लेकिन वहां कौन सुनने वाला था। राम जी ने अपनी तलवार निकला, लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली, दोनों बाजू उसकी ऐसे काट दी, बाजू की पीड़ा हुई, राम लक्ष्मण को नीचे छोड़ा। राम ने कहा लक्ष्मण जल्दी करो, खड्डा खोदो, बड़ा खड्डा खोदो, इसको अंदर जिंदा दफन करो, ये अस्त्र शस्त्र मरेगा नहीं, ब्रह्मा के वचन का सत्य करना है, दबाओ इसको, इसके अंदर खड्डा। लक्ष्मण ने खोदा, अंदर डाल के ऊपर मिट्टी भर दी। यहां पहला राक्षस का श्री रामचंद्र ने उद्धार किया है। और यहां पूछते हैं रामचंद्र, महाराज अगस्त ऋषि का दर्शन करने की इच्छा है। तब ऋषि कुछ साथ देते हैं कि अगस्त के भाई का आश्रम है और ये घट 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 का मतलब जो मटके से जन्म जिसका हुआ है अगस्त, ये मिले हैं। अगस्त ऋषि के दरवाजे के ऊपर रामचंद्र लक्ष्मण और सीता खड़े हैं। ब्रह्मचारी को अंदर समाचार भेजा है। अगस्त कहता है उनको लेके क्यों नहीं आए, उनको बाहर रोका क्यों। अगस्त बाहर निकल के आते हैं, श्री रामचंद्र का स्वागत करते हैं, रामचंद्र प्रणाम करते हैं। अंदर बैठते ही अगस्त जी कहते हैं मैं आपका इंतजार कर रहा था, मुझे आपकी प्रतीक्षा थी। हाथ से कहते हैं ये धनुष भगवान विष्णु का है, ये तुणीर अक्षय दोनों इंद्र के हैं, ये सोने के हत्थे वाली तलवार ब्रह्मा की है, ये सब आप ले लीजिए। इस जन इस पूरे वन के अंदर आपको असुरों के संहार में ये सब अस्त्र शस्त्र दिव्य आपके लिए रखें। हाथ से नहीं दिए, सामने कहा कि ये उठा लो। ऋषि किसी को अस्त्र देता नहीं है। उसको रामचंद्र हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज अगस्त अब यहां से हम कहां जाके निवास करें, हमारे रहने का अब चित्रकूट छोड़ के आए, इस वन के अंदर से गुजर रहे हैं, अब कहां रहें। तब कहते हैं अगस्त जी के यहां से 15-20 मील की दूरी के ऊपर बहुत सुंदर पंचवटी का स्थान है, गोदावरी नदी बहती है, बड़ा सुरमी वन है, सुंदर है, आप वहां निवास कीजिए। आगे चलते हुए एक स्थान के ऊपर बैठे हैं सीताराम लक्ष्मण। आज सीता राम जी से कहती है हे करुणा निधान, हे प्रिय, आदमी का पतन तीन कारण से होता है, आदमी दुख भोगता है। पहला कारण झूठ बोलने से, असत्य बोलेगा तब। दूसरा कारण है पर स्त्री का संग करेगा तब। और तीसरा कारण है बगैर किसी शत्रुता के कोई आपको नहीं मारे और आप उसको मारो तो आदमी पाप का भागी होता है और उसका पतन होता है। फिर सीता जी कहती हैं आपने तो कभी झूठ अपने जबान से बोला नहीं है, आर्यपुत्र आपके मुख से तो असत्य भाषण हो ही नहीं सकता है स्वप्न में भी, और परस्त्री की ओर आपने कभी स्वप्न में सोचा भी नहीं है, यह तो मैं मानती हूं जानती हूं। लेकिन जो असुर हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करे उसको मारने के लिए धनुष उठा के क्यों हम चलते हैं। अति प्रेम के कारण सीता के मन में यह भाव आया कि हमारे हाथ में धनुष, हम तपस्वियों के वेश में हैं, जटाजूट बांधे हैं, वलकल वस्त्र पहने हैं, चीर पहने हुए हैं, तो धनुष मान हाथ में क्यों उठा के चल रहे हैं। फिर सीता एक उदाहरण देती है कि एक ऋषि की तपस्या से इंद्र परेशान हुआ और एक राजा के रूप में आके कहता है ये तलवार मेरी महाराज संभाल के रखना, मैं वापस आके लूंगा। वो तलवार ऋषि के आश्रम में पड़ी थी, ऋषि उस तलवार को देखते 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 उसको हाथ में उठाना शुरू किया, पहले तो उससे पेड़ काटना शुरू किया और फिर पशु काटना शुरू कर दी। तो अस्त्र हाथ में होता है तो कुछ न कुछ उसको चलाने की दिल करती है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक कोई राक्षस हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करे तो ऐसे अस्त्र शस्त्र उठा के और अहिंसक भाव से नहीं चलना चाहिए। तब राम जी कहते हैं सीते मैं शील छोड़ सकता हूं, मैं लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूं, सीता आपका त्याग कर सकता हूं, ऋषियों को दिए हुए वचन को नहीं छोड़ सकता, मैं ऋषियों को दिए हुए वचन को नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने ऋषियों को वचन दिया है इस पूरे दंडकारण्य को मैं राक्षसों से सुन कर दूंगा। सीता कहती है मेरे तो प्रेम में जिनके भाव में जो मैंने कहना था कह दिया, आप जो उचित समझें वो करें। अति प्रेम के कारण ये एक वार्ता बहुत सुंदर है कि परस्पर आपस में बात करते हैं। आगे थोड़े चलते हैं तो एक बड़ा विशाल काया कोई जीव गिरा हुआ देखा है, तो राम जी ने तो तरकस आप उनसे तीर निकाला है और कमान को ऐसे किया है, तो वो कहता है मैं राक्षस नहीं हूं, मैं आपके पिता दशरथ का मित्र हूं, मेरा नाम जटायु है। राम जी निकट गए, पिता का मित्र सुन के प्रणाम किया। जटायु ने उठ के कहा, मैं आपके साथ चलता हूं, पंचवटी को मैं जानता हूं, आपको रास्ता भी बताऊंगा। जब आप दोनों फल फूल लकड़ी लेने जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूंगा, मैं आपके साथ चलता हूं। अब चार, तीन के चार हो गए, चारों चल के पंचवटी में आए। पंचवटी में पांच वट वृक्ष स्पेशल एक जगह थी, वहां हुआ करते थे। वट वृक्ष का मतलब है बड़ के बहुत बड़े पेड़, पीपल जैसे पेड़, पांच गोदावरी के किनारे एक स्थान के ऊपर। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई है, सीताराम लक्ष्मण यहां रहे, लक्ष्मण तो सेवा में रहा, यहां रहने लगे हैं। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग तो नहीं है, लेकिन अद्भुत एक प्रश्न यहां लक्ष्मण पूछते हैं राम जी से कि माया क्या है, ज्ञान क्या है, आपकी प्रेम की भक्ति कैसे हो। ऐसे लक्ष्मण यहां राम जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं एकांत में गोदावरी के किनारे। उस वक्त राम जी कहते हैं, मैं और मेरा ये माया है, जब तक किसी चीज को मैं और मेरा कहता हूं यही सब माया है। और ये माया किसी को पकड़ती नहीं है, हम जाके जबरदस्ती माया की गोद में गिरते हैं। और वहां एक उदाहरण दिया हुआ है बंदर को पकड़ने का, कि सुराही के अंदर कुछ चने डाल के मदारी बंदर के सामने दूर खड़ा हो जाता है। बंदर आके सुराही में हाथ डालेगा, मुट्ठी ऐसे भरेगा चनों से, फिर हाथ बाहर निकलेगा नहीं। जब बाहर हाथ नहीं निकलेगा तो छोड़ो 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 ऐसे करेगा, अगर चने छोड़ दे ऐसे हाथ कर दे तो हाथ निकल सकता है, लेकिन ऐसे करेगा नहीं। तब तक मदारी आके गले में रस्सी डालेगा और तब हाथ भी बाहर निकालेगा, तब तक फंस गया। और मदारी लाठी लेके फिर बाजार में घुमाएगा उसको, कहेगा बाबू को सलाम करो। ऐसे ही इस संसार के अंदर हम भी चीज को पकड़ लेते हैं और माया रूपी मदारी हमको भी सबको सलाम कराता रहता है और हम इधर से उधर घूमते रहके किसी ने पकड़ा नहीं है उसको। दूसरा उदाहरण देते हैं तोते को पकड़ने का। शिकारी तोते को कैसे पकड़ता है, दो ऐसे लाठियां लगाता है, उसके ऊपर एक और रखता है पतली नाली, उसके ऊपर एक पोपली नाली डालता है, जैसे वो स्ट्रा नहीं होती है, स्ट्रा जिससे पीते हैं ये कोल्ड ड्रिंक वाले, उसके ऊपर चढ़ा देता है, आगे कुछ दाने डाल देता है। तोता आके इसके ऊपर ऐसे बैठेगा, बैठने के बाद ऐसे चूच से कुछ दाना चुनने के लिए ऐसे नीचे जाएगा, जैसे नीचे जाएगा पोपली नाली घूम जाएगी, अब तोता ऐसे उल्टा हो गया, जैसे उल्टा हो गया चा 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 छोड़ने के करेगा, लेकिन किसी ने पकड़ा नहीं है, ऐसे पांव करेगा नहीं, तब तक मदारी आके पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद वाला मिट्ठू मिर्ची खाओ। तो असल में ये तीन गुण हैं, ये दो गुण और ये नीचे और तमो गुण, और ये तीन गुणों के अंदर बंधा हुआ जीव मां के गर्भ में उस तोते की तरह उल्टा लटक जाता है और फिर इस संसार में आना पड़ता है। तो किसी ने पकड़ा नहीं है उसको। तीसरा उदाहरण देते हैं रेशम के कीड़े का। रेशम का कीड़ा सारा रेशम बनाता है और रेशम के कीड़े का व्यापारी आता है, गर्म पानी के अंदर सब डालता है, कीड़ा मर जाता है और रेशम ले जाके वो बेच के पैसा कमाता है। ऐसे ही संसारी लोग बहुत बड़ा धन इकट्ठा करके माया इकट्ठी करते हैं और समय उन सबको अग्नि संस्कार करा के और सब माल दूसरे खा जाते हैं, सबका सब कुछ सब चला जाता है। ये माया के तीन उदाहरण यहां अद्भुत दिए हैं कि संसार में माया किसी को नहीं पकड़ती है। और यही बात सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण से बाहर मुख होने से माया पकड़ती है। माया पकड़ती है मतलब आप माया की गोद में गिरते हो, माया आपको पकड़ती नहीं है, आप भगवान को भूलते हो इसलिए माया की गोद में हम गिरते हैं। तो माया के तो माया से बचने का सीधा रास्ता क्या है, भगवान को याद करो, माया नजदीक भी नहीं आएगी। भगवान को भूलने के कारण हम माया की गोद में गिरते हैं, तो भगवान को याद करना माया से मुक्त होने का सरल रास्ता है। और भक्ति के लिए तो कहा बहुत सुंदर ये कहा है कि अभी तक तो राम जी कह रहे थे जो करेगा, अब कहते मम गुण गावत पुलक शरीरा, जब मेरा कोई गुणगान करे मेरा नाम जपे आंखों से अश्रु धाराएं बहेंगे, नए नए बहे नीरा, आंखों से आंखों के अश्रु धारा हो, शरीर में रोमांच हो, ऐसा भक्त मुझे तुरंत प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति का यह बहुत सुंदर रामचंद्र जी शिक्षण देते हुए कहते हैं, जो महाप्रभु के शब्दों में नयनम गलत अश्रु, ऐसा एग्जैक्टली श्लोक है कि जिस भक्त को भगवान के गुणगान करते हुए आंखों में अश्रु आए, रोमांच हो जाए, आनंद में गदगद हो जाए, वो भगवान राम कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है, उनको मैं सुलभ हूं, उनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कथा कहते हुए राम जी कहते हैं नहीं, मैं जल्दी में थोड़ा संक्षेप में आप बताऊंगा। बोला जल्दी में संक्षेप क्यों, वन में है, कोई काम तो है नहीं। बोला एक बहुत जरूरी काम है। क्या काम है जरूरी? बोला सुरपंखा आने वाली है, टाइम उसका हो गया है, क्योंकि अभी तो काम तो अभी चालू होना है। इतनी देर में सुरपंखा सज धज के उस स्थान के ऊपर आती है और आते ही राम जी को देख के कहती है मुस्कुरा के, मुझसे विवाह कर लो। बहुत निर्लज। और राम जी सीता जी के ऊपर नजर रखी हुई है और कहते हैं, बात कर रहे हैं सुरपंखा से लेकिन देख नहीं रहे हैं सुरपंखा को। एक तो वो ऐसे तो लिखा है जब पूतना आई थी सुंदर नारी का रूप बना कर, तो भगवान श्री कृष्ण ने आंखें ही बंद कर दी, देखा ही नहीं। बोले कपट का रूप है, इसको मैं देखूंगा, ये असली रूप में आ जाएगी तो ये भयानक है। तो ये कपट का रूप था। और दूसरा काम आंखों के द्वारा अंदर जाता है मन में, तो भगवान ने नजर तो सीता के ऊपर रखी और कहा देखो मेरे साथ मेरी पत्नी है, तुम्हारे को विवाह करना है ना, तो वो कुमार मेरे साथ जो आया है ना वो अदार है, अपनी दारा को अपनी पत्नी को साथ नहीं लाया है। ये नहीं, झूठ तो राम बोल नहीं सकते हैं कि उसने शादी नहीं की है, विवाह हुआ है लेकिन पत्नी उसके साथ नहीं है। उस अब तो सुरपंखा एकदम जाके कहती है तो लक्ष्मण आप मुझसे विवाह कर लो। हमने पहले दिन आपको कहा था सुरपंखा उसको कहते हैं जिसके नाखून बहुत लंबे सुंदर रंगीले चमकते हुए फैशनेबल हो, उसको सुरपंखा बोलते हैं। नहीं, संस्कृत में लिखा है जिसके नाखून सूप जैसे हों, बड़े बड़े लंबे हों, उसका नाम सुरपंखा होता है। क्यों आपको इतनी परेशानी क्यों? आपको मिली क्या कहीं रास्ते में? अब लक्ष्मण जी कहते हैं देखो मैं इनका दास हूं, तुम मुझसे विवाह करोगी तो सारी उम्र नौकरी करनी पड़ेगी, उसी से विवाह कर लो। अब वापस राम जी के पास आती है, इसको कहते हैं कामचारिणी। उसका यह मतलब नहीं था किससे विवाह करना है, बस काम में। एक तो असुरी थी, एक कामचारिणी थी, न धर्म का व्यवहार था न संस्कार थे। राम जी ने फिर उधर भेजा बाल की तरह, वो उधर फेंके तो उसने कहा इस स्त्री के कारण आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हो ना, मैं इसको ही नोच के खा जाती हूं। वो सीता की तरफ ऐसे लपकी। राम जी कहते हैं लक्ष्मण देर मत करो, लक्ष्मण देर मत करो। लक्ष्मण ने ऐसे फटाफट में चाकू निकाला, नाक को छील लिया, कान को काट लिया। अब तो हो नाक कान से ऐसे जब बहने लगा खून, वहां से दौड़ती हुई भागी, भागती 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 9 बजे तक जाके खरदूषण के पास पहुंची। नौ बजे खरदूषण के पास पहुंची, रात का टाइम। अरे कृष्णा, रावण ने जनस्थान के ऊपर अपनी आउट पोस्ट बना के 14,000 राक्षस खर दूषण त्रिसरा और अकंपन, ये 4 लीडर थे, एक का नाम था अकंपन, एक का नाम था त्रिसरा, एक का नाम था खर, एक का नाम था दूषण। इनको 14,000 राक्षसों के वहां साथ रखा था। सुरपंखा ने आकर कहा देखो मेरा हाल, वो जाते हुए मेरे कान नाक काट दिए, ये नहीं बताया कि मैं उनसे गई थी विवाह करने और मेरा ये हाल किया है। 14 राक्षसों को भेजा, जाओ उसको जिंदा पकड़ के आओ या मार के आओ। 14 आए, राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम सीता की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ, मैं राक्षसों को देखता हूं। राम जी ने कहा देखो हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं है, आप जाइए, हमसे झगड़ा आपसे करना ही नहीं है। नहीं नहीं, हम आपको जबरदस्ती पकड़ने के लिए आए हैं, या मारेंगे या पकड़ के जाएंगे। सूर्यपंखा पेड़ के पीछे खड़ी है कि अभी इनको बांधेंगे फिर मैं कहूंगी विवाह करते हो कि नहीं। वो तो खड़ी थी पीछे। तब तक राम जी ने कहा ये मानने वाले लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। एक बाण से 14 के प्राण निकल गए और सूर्यपंखा पीछे से भागी, खर दूषण 14 मर गए। 14 मर गए तो 14,000 को लेकर खर दूषण आए। खर कहते हैं गधे को जो कभी समझ जिसके मैंने कुछ भी नहीं आए, और दूषण कहते हैं जो दूसरे के दोष को देखे अपने दोष की तरफ कभी नजर ही नहीं जाए। अरे सूर्यपंखा का दोष दिखता ही नहीं और राम जी में दोष दिखता है उसको। और तिरसरा कहते हैं एक मुंह से एक बात दूसरे से दूसरी तीसरे से तीसरी जिसे कोई ठिकाना ना हो। तो ये तीनों मूर्ख पहले नंबर के थे। भगवान अकेले रामचंद्र ने सबको मारा, खर बचा, बड़ी हाथ में गदा थी। उस गदा तो ब्रह्मा जी के वरदान से कोई मिली हुई थी, देवता भी कांपते थे। भगवान अभी भी आप जाओ, मुझे आपको मारने से कोई लेना देना नहीं है। महाराज एक राम जी ने बाण चलाया, नीचे खिरी गदा। राम जी का गदा उठाओ गधे, खर तो था ही, तो राम जी ने ट्रांसलेशन कर दी कि गधे गदा उठाओ। लेकिन गधा समझने वाला नहीं था। एक बाण हुआ, वो अकंपन बच गया और सीधा लंका में कांप रहा है। अरे रावण ने बोला तेरा नाम अकंपन है, तू कांप क्यों रहा है? कहता है मेरे को प्राण दान दे दो, मुझे मारोगे नहीं तो सत्य बताओ। बोला तुझे प्राण दान दिया, बोलो। बोला महाराज 14,000 राक्षस खर दूषण के साथ राम लक्ष्मण ने मार दिए, उनसे झगड़ा मत करना, सर्वनाश हो जाएगा, बड़े बलवान है, ऐसे मैंने जीवन में नहीं देखे हैं। वैसे तो रावण मार देता, अभी तो उसको दे दिया था प्राण दान। तब फिर कहता है महाराज एक बात बताऊं, उनसे लड़ने से कुछ नहीं है, उनके साथ एक स्त्री है उसको उठा के आओ तो वो अपने आप मर जाएंगे। अब रावण यहां से योजना क्या बनाएगा? तब तक शांति से सीताराम लक्ष्मण को आनंद से रहने दो पंचवटी में, और सूर्यपंखा को मलम पट्टी कराने दो, आप प्रसाद पाओ। हरे कृष्णा।